सफलता प्राप्त करना वैसे भी बहुत मुश्किल ही होता है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो वैसे मेरी जर्नी तो बहुत टाइम पहले 1971 में शुरू हुई थी जयपुर में, और जब मैंने वहां पर थिएटर शुरू किया था। और बेसिकली मैं थिएटर का ही आदमी हूँ, अपने आप को अभी भी थिएटर का ही आदमी मानता हूँ। माई फर्स्ट लव, माई फर्स्ट पैशन इज थिएटर। उसके बाद फिर मैं बहुत सारे हिंदी नाटकों में काम करता रहा। फिर 1981 में, 1981 में दिल्ली में श्री राम सेंटर रेपर्टरी कंपनी है, जो प्रोफेशनल रेपर्टरी कंपनी है, वहां मैंने ज्वाइन किया। 2 साल मैंने वहां पर काम किया। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपर्टरी कंपनी में मैं ज्वाइन हुआ। लेकिन उसी टाइम मुझे संगीत नाटक अकेडमी से एक फेलोशिप मिल गई रिसर्च वर्क करने की, राजस्थान के फोक फॉर्म पर। तो एक गबरी फोक फॉर्म है राजस्थान का, उदयपुर के आसपास भीलों के क्षेत्र में। तो उस पर मैंने रिसर्च वर्क किया, उसके साथ में प्ले भी किया उन लोगों के साथ में, भानु भारती के गाइडेंस में। और वो नाटक हमने काफी जगह हिंदुस्तान में काफी जगह किया। और उसके बाद मैं थिएटर करता रहा, कुछ एजुकेशनल वर्क करता रहा, थिएटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वर्कशॉप्स लगाता रहा। फिर 1988-89 में बॉम्बे आया। बॉम्बे में फिर मेरे काफी सारे दोस्त लोग तब तक यहाँ पर आ चुके थे, तो मैं भी बॉम्बे आ गया अपना एक विस्तार करने के लिए। क्योंकि हर कलाकार की एक इच्छा होती है कि वो आगे से आगे जाए, थोड़ा और विस्तार करे अपना। तो मुझे लगा कि अब इस दुनिया में भी कदम रखा जाए। और उस टाइम तक नसीर, ओम पुरी वगैरह सब यहाँ पर आ चुके थे, तो हमें लगा कि एक चिकने चुपड़े चेहरे की जरूरत नहीं होती, एक अच्छे अभिनेता की भी जरूरत होती है इस क्षेत्र में। तो मैं भी आ गया। उस टाइम सिर्फ दूरदर्शन ही था, तो एक बहुत मशहूर हिंदुस्तान की बहुत ही मशहूर फिल्म निर्देशिका और थिएटर डायरेक्टर है विजया मेहता, उन्होंने एक सीरियल बनाया था लाइफलाइन, जीवन रेखा। उसमें मैंने पहली बार काम किया। 26 एपिसोड का सीरियल था वो। उसके बाद फिर श्याम बेनेगल एक सीरियल बना रहे थे, भारत एक खोज, उसमें
जी
काम किया। और इस तरीके से सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद मैंने 2 बहुत ही प्रसिद्ध नॉवल हैं शरद चंद्र के, कलकत्ता के, हिंदुस्तान के बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके 2 सीरियल्स, उनके 2 उपन्यासों में मैंने, जब उनके 2 उपन्यासों में सीरियल बन रहा था, तो मैंने काम किया। एक चरित्रहीन था और एक था शेष प्रश्न। शेष प्रश्न में मेरे साथ इरफान खान, जो आज के इंटरनेशनल स्टार है, वो भी थे, बाकी और बहुत सारे लोग थे। और फिर सिलसिला शुरू हुआ। 18 साल पहले एक सीरियल बनना शुरू हुआ, सीआईडी। उस सीआईडी में मुझे लिया गया, एक एपिसोड के लिए लिया गया था एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट। लेकिन फिर चैनल को और हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को लगा कि फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट है वो तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है,
जी
और ये जिस बंदे को, जिस एक्टर को हमने कास्ट किया है, ही इज डूइंग जस्टिस, ऐसा उन्हें लगा। तो उन्होंने इस कैरेक्टर को कंटिन्यू कर दिया। और पिछले 18 साल से मैं सीआईडी में डॉक्टर सालू खे, जो कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उसका काम कर रहा हूँ। इस बीच मैंने थिएटर भी किया, अपनी एक किताब भी लिखी मैंने, जो एक नाटक लिखा था मैंने हिंदी में, एक तू और एक मैं, वो मेरे एक साथी कलाकार है सुनील सिन्हा, उनके साथ मिलकर के उसकी बुक भी पब्लिश हो चुकी है। उसका हमने प्ले स्टेज शोज भी किए हैं। और ये जर्नी, एक कलाकार की जो जर्नी होती है, वो अनवरत चलती रहती है। तो मुझे भी अभी भी लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी है। तो मैं उसी जर्नी में अभी तक एक यात्री के तौर पर हूँ, चल रहा हूँ।
जी अच्छा ये बताइए कि क्या जब आप सड़क पर चलते हैं कहीं जाते हैं तो क्या लोग आपको पहचानते हैं उस कैरेक्टर के तौर पर, क्योंकि मेरे ख्याल सीआईडी सबसे लंबा चलने वाला, या सबसे लंबा ना हो लेकिन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग सीरियल्स भारत में शायद
नहीं,
है।
सबसे लंबा ही सीरियल है सीआईडी जो है वो। कोई सीरियल 18 साल तक लगभग, अभी हम उन 18 साल कंप्लीट करके 19वें साल में चल रहे हैं, इससे लंबा कोई सीरियल चला नहीं। और दूसरी सबसे खास बात इस सीरियल की यह है कि जो 5 लोग हैं मेन करेक्टर्स, वो पिछले 18 साल से एक ही है, सेम है, कोई कास्ट बदली नहीं हुई इन 5 करेक्टर्स की। और हाँ, अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग तो मुझे मानते ही ऐसे हैं कि जैसे मैं डॉक्टर ही हूँ, और
जी
मेरा नाम नहीं पुकारते, मुझे सालूखे ही कहते हैं। और एक और अजीब बढ़िया, मतलब जो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, मेरे लिए एक सम्मानजनक बात है, लता मंगेशकर बहुत बड़ी फैन है सीआईडी की। और लता मंगेशकर ने मुझसे एक बार कहा कि मैं आपका नाम जानती हूँ, कि आपका नाम नरेंद्र गुप्ता है। लेकिन आपका डॉक्टर सालुके का करेक्टर इतना मुझे पसंद है कि मैं आपको सालुके ही बोला करूंगी, मैं नरेंद्र गुप्ता नहीं बोलूंगी। मैंने कहा ये तो मेरे लिए एक प्रमाण पत्र है दीदी, और लता दीदी भी मुझे सालुके साहब के नाम से ही पुकारती हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान की बात है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लता मंगेशकर जैसे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो, और अच्छा लगता है कलाकार के जीवन में एक सुखद पल होता है कि जब जो चरित्र वो निभा रहा है वो चरित्र इतना अच्छा लगे लोगों को कि लोग उसको उस चरित्र से ही वाबस्ता हो जाएं, उसी से जानने लगें, तो मुझे भी अच्छा लगता है, खुशी होती है। और ये भी लगता है कि एक जिम्मेदारी है मेरी कि मैं इस चरित्र को और आगे जो भी चरित्र करें उनको और ज्यादा जिम्मेदारी से और ज्यादा मेहनत से निभाऊं, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है।
एक आखिरी सवाल नरेंद्र जी आपसे कि आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो कलाकार हैं और जो करियर बनाना चाहते हैं?
देखिए टफ हर चीज होती है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी काम करना या कोई भी जगह हासिल करना या किसी भी काम को करना आसान है, पहले भी नहीं था, अब बिल्कुल भी नहीं रहा है। और चाहे कोई पेंटर हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई अकाउंटेंट हो, चाहे कोई क्लर्क हो, उसका काम अब, चाहे कोई बैंकर हो, सबका काम अपने अपने तरीके से अपनी अपनी दृष्टि से इम्पोर्टेंट ही होता है। हाँ, कलाकार के जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो उसको एक प्रसिद्धि भी दे देती है, और तो लोग शायद इस लालच से इस दृष्टिकोण से आते हैं कि हम भी प्रसिद्ध हो जाएंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ यही करने के लिए आना है तो मेरे को लगता है नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है एक किस्म का पैशन, एक किस्म का कमिटमेंट जरूर होना चाहिए जो आप कर रहे हैं उसके प्रति। अगर पैशन नहीं होगा तो आप कहते हैं ना कलाकार को थोड़ा सा पागल होना ही चाहिए। पागलपन से मेरा मंतव्य, मेरा ख्याल यह है कि एक कलाकार को इतना पैशनेट होना चाहिए कि जब वो अपना काम कर रहा है तो वो फिर वो कुछ याद नहीं रखता, फिर वो कुछ नहीं करता। एक बैंकर एक छुट्टी ले सकता है बीमार है तो, लेकिन हम बीमार हैं तो भी हमको शूटिंग पे जाना पड़ता है, हम बीमार हैं तब भी हमको स्टेज पे परफॉर्मेंस करनी पड़ती है क्योंकि टिकटेड शो होता है, परफॉर्मेंस करनी ही है, लाइव टेलीकास्ट होना है, परफॉर्मेंस करनी ही है, चाहे हम बीमार हैं, चाहे घर में कोई बीमार है, चाहे कोई और है, तो वो एक पैशन होता है, एक कमिटमेंट होता है, और वही पैशन वही कमिटमेंट आपको और सिखाना चाहता है। और मेरा ये मानना है कि नए लोगों से मैं कहता हूँ कि कभी भी ये मत सोचिए कि हमको सब कुछ आ गया है, क्योंकि जब आदमी ये सोच लेता है कि हमको सब कुछ आ गया है, हम एक्टिंग सीख गए या हम डायरेक्शन सीख गए, वो डेफिनेट डेथ है, उस टाइम बस आपकी मृत्यु है एक कलाकार के तौर पर, क्योंकि ये अनवरत यात्रा है। जैसे मैं अभी कह रहा था कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मेरे ख्याल से 40-45 साल हो गए मुझे थिएटर और सिनेमा और इसमें ज्वाइन किए हुए, थिएटर करते हुए 40 साल हो गए, लेकिन मैं अभी भी ईमानदारी से मानता हूँ कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि हर पल कलाकार को सीखने का मौका होता है। वो पैशन न जाने दें, वो पैशन रखेंगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी।
नरेंद्र जी, वक्त निकाल कर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया, मेरे लिए सम्मान की बात है, थैंक यू।